राधे
जगद्गुरु कृपालु परिषद प्रेजेंटिंग चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पॉडकास्ट फॉर अ बेटर एग्जिस्टेंस।
और हर मनुष्य को केवल अपनी तरफ देखना चाहिए तो तेजी से उत्थान होता है। केवल अपनी तरफ, इस व्यक्ति में क्या गड़बड़ी है ये सोचना तुम्हारे मस्तिष्क की गड़बड़ी को साबित करता है। सोचा कैसे तुमने उसकी गड़बड़ी? तुम्हारे पास गड़बड़ी कोई है कि नहीं अभी? अरे हाँ है, तो कुछ है क्या कही है, तो उसकी तरफ क्यों नहीं देखा? इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? उसमें कोई गुण भी होगा? हाँ गुण है, तो वो गुण जो उसका है वो ग्रहण करो ना। उसमें एक विशेष गुण है वो ग्रहण कर लो और अवगुण अपने ग्रहण करो ताकि वो बदले, का सुधार हो। दूसरे में दोष देखना अपने सदोष होने का पक्का प्रमाण, क्योंकि दोष तो सब में है, एक जनरल बात, लेकिन गुण भी है। तो तुमको तो चाहिए ये कि ऐसी चीज देखो जिससे फायदा हो तुम्हारा। बाजार में सब चीज बिकती है, बिके क्या करें, हमको शराब नहीं पीना, हमको मांस नहीं खाना, हमको दूध पीना है, दूध की दुकान पर जाओ दूध पियो चले आओ, बस सीधी सीधी बात है। अपनी लाइफ का एक एक क्षण अच्छाई में बिताओ, बुराई में भी अच्छाई निकालो जबरदस्ती। एक स्त्री पुरुष सड़क पर खड़े होकर चिपटा रहे हैं, अब उस समय तुम अपनी भावना को अच्छा ही बनाओ। अरे क्या पता भाई बहन हो, क्या पता मां बेटे हो, क्या पता है मासी वासी हो इनकी, हम ब्याह खोपड़ा खराब कर रहे हैं, कितना पागल पड़े अपराध कर रहे हैं। जब बुराई में अच्छाई देखने का आदेश है शास्त्र वेद का, तो फिर बुराई में बुराई देखना और फिर वो बुराई है कि नहीं है ये श्योरिटी भी नहीं किसी के पास, कोई मायाबद्ध जीव नहीं जान सकता कि ये असली है कि नकली है, इसका अमुक व्यवहार कोई नहीं जान सकता। सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो हमको अच्छाई ही सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और गड़बड़ी अपनी देखनी चाहिए। वो अपने को भगवान का भक्त कहे या गुरु भक्त कहे या माता पिता भक्त कहे, वो सब ने और अपने को भक्त मानने की भावना आई तभी दूसरे में दोष देखा, वरना उसके पास टाइम कहां, किसी में दोष देखने का टाइम कहां, और किस ग्रंथ में किस गुरु ने किस संत ने कहा है कि तुम 10 मिनट निकाल के दूसरे में दोष देखा करो? ये तुमने किसकी आज्ञा से किया? दूसरे में दोष देखने वाला कार्य तुमसे हुआ कैसे? तो हितैषी गुरु जो होगा तो दोष देखने वाले को पहले डांटे। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक आदमी मिर्ची की पोटली बना के ले आवे, लाल मिर्च की पोटली, और सब कीर्तन में आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, देखे तो उसको शर्म आवे कि मैं ही पत्थर का हूं, तो पोटली को धीरे से ऐसे पीछे से करके लगा ले तो पानी निकलेगा ही, वो तो मिर्चा है, तो किसी ने देख लिया, देखा है तो पाखंड है, खुलेआम कर रहा हो गया महापुरुष के पास। उन्होंने कहा महाराज जी तो अमुक आदमी ऐसा करता है, तो महाप्रभु जी उठे और दौड़ को उसको चिपटा लिया, और जिसने देखा तो उसने कहा कि तुम चले जाओ, एक महीने सप्तम में बताना। अब वो सोच रहा है कि मुझको क्यों निकाल दिया, मैंने क्या गुनाह किया था और जो पाखंड कर रहा है उसको चिपटा लिया। तो और सप्तंगियों ने पूछा दबे दबान, महाराज इसका रहस्य हम लोग जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा इसके दिमाग में ये तत्व ज्ञान भरा है कि आंसू बहाने से ही काम बनेगा, हृदय कठोर है, संस्कार अच्छे नहीं है, इसलिए आंसू नहीं बहा पाता, तो दंड दे रहा है। लेकिन ये महाशय जो यहां कीर्तन करने आते हैं ये यही देखते हैं कौन क्या लगा रहा है, इनको ये फुर्सत कहां से मिल गई, ये अपना रूप ध्यान साधना क्यों नहीं करते, दूसरे की ओर क्यों देखा, और अगर आज देखा पहली बार तो अब कल फिर देखेंगे, फिर तो यही किया करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है करने में ना जीव को, क्योंकि अभ्यास है तमाम जन्मों का, फिर यही किया करेगा वो तो अपना सभ्य। इस अंतःकरण में हरिओम गुरु को लाना है, उस अंतःकरण में आप दूसरे को लाए जिसके प्रति आपकी खराब भावना है, उसको ले आए आप तो आपका अंतःकरण तो गंदा हो गया, उसको लाए क्यों, या मन को वहां ले क्यों गए, मन को वहीं ले जाओ जहां शुद्ध धोना है उसको, हर समय निर्मल जल से धो, गंदगी ना आ के घर गए जल्दी जल्दी बीबी ने मामूली जल्दी की तो अपने आप गए और हाथ का पंखा ले चुपचाप और बीबी के हाथ पकड़ा दिया। अगर मशीन सेवा कर लेगी गुरु की तो तुम क्या करो,
सही बात है सही बात है।
अब इसमें का इंचार्ज मेरी ड्यूटी है, मैं उनकी गलती तकनी को बताऊं, इनकी ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी है जो गलती इनको बताई जा रही है उसको ठीक करें। और तुम्हारा सब्जेक्ट ये है कि जब तुम उनके इंचार्ज हो तो तुमको तो गलती बतानी चाहिए, ड्यूटी है तुम्हारी। अब मैं गलती ना बताऊं इनको तो मैं तो ड्यूटी गया, अंतर है। और फिर ये मटेरियल सब्जेक्ट है तुम्हारा,
क्लियर क्लियर,
इसमें कोई दोष देखने की बात नहीं है, तो एक बिजनेस है, किसी को अनुभव अधिक है किसी को कम है, तो कम अनुभव वाले की अनुभव कराना,
दूसरे में दोष देखना, अपने को अच्छा कहना, ये बड़ी भयंकर बीमारी है, और ये बीमारी जब तक है तब तक साधना का एक भी नहीं शुरू हो सकता। कीर्तन करके मर जाए, जब करके चाहे प्राण छोड़ दे उससे मिलेगा। पहला सूत्र है तृणा दक्षिणी के नीरता, पहला आधार हमारी ये है, भूल को ले लो, आओगे की ओर देखो ना, तुम्हारे हृदय में अच्छी अच्छी चीज आवे, जैसे खाना खाते हो कंकड़ आ गया फिर खाने में फिर कंकड़ है। सकते हैं। कोई चीज कहीं भी किसी भी व्यक्ति में कोई दोष है हमें उसको नहीं देखना, गुण है उसको देखना। जहां दोष दिखाई पड़ा उसको पहले पकड़ते हैं और जो गुण है उसको उड़ा देते। ये सबसे बड़ा भयंकर रोग हमेशा जैसे हंस संत हंस गुण गहन पाए। अरे भाई ये सोचो कि वो साधक और जगह गया, परिश्रम किया, अपने टाइम दिया, शरीर का कष्ट सहा, तो वो उसका उत्तर क्यों नहीं मानते। कल्पना करो उसकी बुद्धि में कोई बात ऐसी आ गई कि इसके आगे हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, भले ही होगा पास में पैसा हम नहीं खर्च करते, तो जितना किया उसका पैसा मान। सबसे बड़ा गुण यही है कि दोष में भी गुण देखना।
इस जन्म में पैसा मिल जाता है अपने आप, वो समझता है हम बड़े काबिल हैं, हमने ऐसा बिजनेस किया कि अरबपति हो गए, ऐसा कुछ नहीं। पूर्व जन्म का दान काम देता है आदमी के, तमाम बुद्धिमान है बेचारे, रोटी दाल को तरस रहे हैं लेकिन वो दान दिया हुआ मिल जाता है। दरिद्र भावात् च करोति पापम, पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। वेदव्यास ने कहा कि जो दान नहीं करता वो अगले जन्म में दरिद्री बनता है, और जो दरिद्री बनता है तो फिर रोटी दाल के लिए पाप करता है, और जो पाप करता है तो फिर नरक मिलता है। गले बद्धवा दृढ़ाम शिलाम, धनवंत मदातारम, दरिद्रम चा तपस्विनम। वेदव्यास ने कहा है कि उन दोनों को, इन दोनों के गले में बहुत बड़ी चट्टान बांध के पानी में डाल देना चाहिए। इन दोनों को बहुत बड़ी चट्टान गले में लटका करके उनको पानी में डाल देना चाहिए कि ऊपर ना आवे, वही खत्म हो जाए। कौन तो धनवंत मदातारम, पैसा होते हुए दान न करें, और दरिद्रम चातपस्विनम, और दरिद्री हो और फिर भी भगवान की भक्ति न करे, अकड़ा रहे। इन दोनों के गले में बहुत बड़ी शिला बांध के अम्बस निवेश टब्बे पानी में डाल देना चाहिए, समुद्र में वही खत्म हो जाए। इनके जिंदा रहने से क्या फायदा, कि पैसा साथ नहीं जाएगा, पर ये बच्चों को मिलेगा तो बच्चे आवारा होंगे, इतना पैसा इकट्ठा मिल जाएगा उनको जब, और इसके कमाने में जो गलतियां की है उसका दंड हमको भोगना पड़ेगा। तो पैसा अधिक आता है, अरबपति बनते हैं लोग, गरीबों का थोड़ा थोड़ा पैसा प्रॉफिट लेकर के तब मिलानर बन जाते हैं, तो पैसा तो गरीबों का ही है वो, और शास्त्र वेद को मानते हैं कि तुम्हें इतने परसेंट दान करना ही है। यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदय इनाम, जैसे बैंक में कैशियर होता है वो केवल 8,000 रुपये तनख्वाह का हकदार है, करोड़ों रुपया बैंक में वो जिना करे और बांटा करे उसके वो अधिकारी नहीं है, अगर हड़प करता है तो गबन का केस चल जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। दुनियावी गवर्नमेंट में जैसे, ऐसे ही वेद व्यास कहते हैं जितने में तुम्हारे शरीर का काम चल जाए, काम चल जाए, रोटी दाल कपड़ा तुम्हारा एक काम चल जाए जितने में। अब
₹100 की साड़ी पहन के भी शरीर ढक जाएगा और 10,000 की साड़ी पहन के भी शरीर ढक जाएगा। 10,000 की साड़ी क्यों पहनते हो? लोग तुम्हें तारी तारीफ थोड़े करेंगे, लोग कहेंगे देखो क्या श्रृंगारती है, चलती है, स्कूल में पढ़ाती है, प्राइमरी में, और थाट ये देखो इसके। तुम समझते हो लोग तारीफ करेंगे? कोई नहीं करता किसी की तारीफ, सब मुंह पर तारीफ कर देते हैं, बाद में बुराई करते हैं। सबका एक कायदा है सारे विश्व का, तो क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो, आदत क्यों खराब करते हो? तुम्हारा इतने अधिकार इस सृष्टि में भगवान ने दिया है, जितने में तुम्हारा काम चल जाए। अधिकम यो भी मनने तो इससे अधिक खर्च करो या इकट्ठा करो, तो सस्तेनो वो चोर है और दंड मर रहती, उसको दंड मिलेगा। जैसे इनकम टैक्स चुराने वाले को दंड मिलता है। अरे दान के बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर को दास बना लिया हरिश्चंद्र ने, केवल दान से, और कोई तपस्या नहीं की। और फिर जितने धर्म के स्वरूप है वे सब कलयुग में लुप्त हो गए हैं। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, ये न केन विधि दीनु दान करई कल्याण। दान एक धर्म ऐसा है कलयुग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहां भी शर्त है कि सत पात्र में होना चाहिए, पात्र के अनुसार दान का फल मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने दान किया तुमको नरक भोगना पड़े। एक भूखा आदमी था, उसको तुमने खाना खिला दिया और ताकत आ गई, उसने मर्डर कर दिया। तुम जिम्मेदार हो। अरे भाई मुझे क्या मालूम? मालूम हो ना हो, गवर्नमेंट का कानून किसी को नहीं मालूम है तो सजा नहीं मिलेगी क्या? वो तो दंड तो मिलेगा ही।
अब उसको चाके डालते हैं और चोरी करते सब पैसा इकट्ठा करता है और बाद में दान करता है, तो उसका क्या होगा? उसके पाप क्षमा हो जाएंगे दान करने से?
नहीं नहीं, क्षमा नहीं होंगे, लेकिन रियायत होगी। दान का फल अलग मिलेगा और डकैती का फल अलग मिलेगा। दान उसने किया सत पात्र में अगर, तो बेकार नहीं जाएगा, उसका फल उसको मिलेगा, लेकिन डकैती का दंड भी मिलेगा, मर्डर का दंड भी मिलेगा। इसीलिए स्वर्ग नरक दो बनाए गए हैं कि पुण्य कर्म का फल भोगो 10,000 वर्ष, ये तुम्हारे पुण्य का फल है, उसके बाद नरक जाना पड़ेगा तुमको क्योंकि तुमने मर्डर किए। पैसा ले लिया अपनी मेहनताना के अलावा, क्योंकि बहुत पैसे वाला था, उस पैसे को हमने दान कर दिया तो वो गलत नहीं है, बशर्ते कि गरीब से न ले और अपने उपयोग में न लावे, परमार्थ में खर्च कर दे। उधर से लेके उधर दे दिया, हमने उधर क्यों लिया? उधर देने के लिए, तो हमारा एम स्पिरिचुअल है, इसलिए हमको सही फल मिले। ये लॉर्ड
एक होता है ये कहा गया है कि भाई पहले तुम कुछ न करो तो जितने कमाते हो 10वां हिस्सा करो, तो ये तो तुम्हें कंपलसरी है इनकम टैक्स की तरह, इतना दान करो, लेकिन सही पात्र में दान करो, जिस पात्र में करोगे वैसे फल मिलेगा। अब जो इससे अधिक दान करे उसको परमार्थ बनेगा, और जब हरिश्चंद्र की तरह पहुंच जाए दान में, अपने आप को दान कर दे, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
बीवी ने डांटा, पति ने डांटा, बाप ने डांटा, दोस्त ने डांटा, अपमान किया, हमने सुना,
बुरा लगा। अब अगर हम इसका जवाब देते हैं तो उसका क्रोध और बढ़ेगा, तो और भयानक व्यवहार करेगा, तो हमारा क्रोध और बढ़ेगा, तो हम और भयानक व्यवहार करेंगे, तो इस कंपटीशन में फिर मारपीट भी हो सकती है, बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, तलाक वलाक हो जाता है सब इसी में, एक से एक जब आगे बढ़ते गए तो। एक तो इसलिए भी हमको बचाना है कि उसने कुछ कहा पहले चुप, जवाब नहीं देना, फिर विवेक से भीतर जो क्रोध आया है उसको काटो कि इसने जो कहा है तो फैक्ट, हमारे अंदर दोष तो सब है ही है, फिर क्यों बुरा माने। नंबर दो, इसका कुछ स्वार्थ नष्ट होने का आइडिया इसको हुआ है हमसे, इसलिए ऐसा है गुस्से में मेरा अपमान कर रहा है। ये हमेशा नहीं ऐसे रहेगा, कि नॉर्मल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, जवाब नहीं देना। अनेक रीजन सामने रख करके उस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको ही खत्म कर दे और फिर धीरे धीरे भीतर को ठीक कर ले। और अगर व्यवहार में आगे बढ़ा तो भीतर का क्रोध और बढ़ेगा और हानि होगी। तो पहला इलाज यह है चुप, बस पहले चुप, वो दो चार दस बात के बोलेगा वो जान लेगा ये चुप, तो वो भी चुप हो जाएगा। अगर हम बोले तो फिर उसका क्रोध बढ़ेगा, फिर उसके जवाब में हमारा क्रोध बढ़ेगा, तो उससे बहुत हानि हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले संसारी व्यवहार में किसी के अपमान में मौन ले लेना, चुप हो जाना या वहां से चले जाना, न जा सके तो चुप रहे कम से कम, और फिर रीड करें अपने आप को, इसने ऐसा कहा है तो तुम स्वार्थी हो, बात तो ठीक है, सब स्वार्थी है, मैं भी स्वार्थी हूं, इसमें गुस्सा करने की क्या बात। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने बताया है, हमने भी समझा है उसको, गुस्सा नहीं करना, चुप, गुस्सा खत्म कर दिया। तो गुरु के तत्व ज्ञान से, शास्त्र वेद के तत्व ज्ञान से उन दोषों को काटना, ये अभ्यास करना होगा। कभी भूल जाए और कोई बात की निकल जाए मुझसे तो फिर रोक दे। देखो किसी को आग लगती है, स्त्रियां खाना पकाती हैं तो कभी कभी आंचल में आग लग जाती है, तो वहीं पर तुरंत पकड़ लेती हैं, बुझा देती हैं। अगर वो लापरवाही करे कि लगने दो पढ़ने दो हमको क्या करना है, तो जल जाएगा पूरा शरीर। तो कोई भी दोष अंदर आवे, क्रोध हो, लोभ हो, कुछ भी, तो तुरंत दबाओ तो आराम से दब जाएगा।
राधे।